created with free version for non-commercial use.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
खातून ने तो वो मुसलमानों के उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये इस्लाम माशाल्लाह ऐसी वफा सिखाता है. तो वो हमारे जो रिश्तेदार थे वो वाकया सुना रहे थे कि उसने मुझसे इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की, मैंने उसको इस्लाम के बारे में बताया, किताबें दी, अल्लाह की कुदरत, वो मुसलमान होके आ गए. और मुसलमान होने के बाद उसने कहा कि भाई मुझे क्या क्या करना चाहिए. मैंने बताया कि शराब छोड़ दो. उसने कहा मैंने कुरान में जब पढ़ा कि शराब हराम है उसी वक्त छोड़ दी मैंने. कह रहे मैंने उससे कहा कि भाई ये जो तुमने स्कर्ट पहना हुआ है लिबास बेहुदा है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक पर्दा होना चाहिए, मुसलमान औरत हिजाब करती. कह रहे वो भाई बुर्का पहन के आ गई. जो जो कह रहे हैं उस पर अमल कर रही है, बाकिरदार मुसलमान बन गई. कह रहे मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे आप लोग अभी कह रहे थे ना सुभान अल्लाह, उन्होंने सुभान अल्लाह. आगे मसला खराब हुआ. उस खातून ने कहा अब आप मुझसे शादी कर लें. कह रहे मैंने कहा कि भाई मेरी तो 5 बच्चे हैं, मैं कैसे कर लूं. उसने कहा जिस कुरान में लिखा हुआ है शराब हराम है उसी में ये भी लिखा हुआ है कि मर्द 4 कर सकता है. कह रहे मैंने कहा वो तो कर सकता है. कह रहे मुझे वो आदमी जो हिंदू बलवाइयों से नहीं डरा है, जो गांव देहात में जिन बलवाइयों ने हमला किया था उससे नहीं डरा, वो आदमी यहां आगे डर रहा है, बीवी से भी डर रहा है, बच्चों से भी डर रहा है. कह रहे मैंने कहा भाई वो मुझे ख्याल आया कि यार मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा इसको लेके, एयरपोर्ट पे बेगम साहब आ गई, बोलेंगी क्या तोहफा लेकर आ रहा है भाई, कि कौन है ये आंटी, कहां से आई. कह रहे मैंने कहा मैं नहीं कर सकता. तो कह रहे उसने कहा कि तुमने कहा था मैं किरदार का मुसलमान हूं, नाम का मुसलमान, उसको देखो जुमला याद था, तुमने कहा था मैं नाम का मुसलमान नहीं बल्कि किरदार का मुसलमान. कह रहे मैं फंस गया. मैंने कहा यार बात है वाकई मैंने कहा था ये.
अकबर दबे न थे कभी ब्रिटिश की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बेगम की नोक से. अकबर इलाहाबादी कहते हैं मैं बरतानिया की आर्मी के सामने लड़ाऊं, बीवी के सामने फेर हो जाता. तो वो कह रहे मैंने कहा भाई वो मसला ये है कि इस्लाम में शर्त के साथ है कि अदल कर सकता हूँ. ये जो अदल की शर्तें, अदल तो है इस्लाम में, लेकिन आजकल जो अदल की बातें होती है ना ये उनका मकसद होता है मेरे अंदर दम नहीं है, मैं मुआशरे की बेसहारा औरतों को सहारा नहीं दे सकता, ये असल मकसद ये होता है. तो कह रहे मैंने कहा कि भाई वो अदल नहीं हो सकता, बराबरी बहुत जरूरी है ये वो. तो कह रहे उसने अपना पांव जोर से जमीन पे मारा. उसने कहा तुमने अपनी जान छुड़ाई है, और बड़ी खूबसूरती से बहाना करके चली गई. फिर कह रहे ऑफिस ही छोड़ दिया उसने. बाद में पता चला किसी अरब ने उससे निकाह किया है. अल्लाह अरबों को जजाय खैर दे. पाकिस्तानी और इंडियन सवाल ही पता नहीं होता, वो इसी में लगे रहेंगे, शहवत परस्ती और ये और फलाना ढंका, बच्चों का क्या होगा, हाई बनाने का क्या होगा. और बच्चों का क्या हुआ आगे सुने. ये वाकया सुना के वो जो हमारे बुजुर्ग थे बूढ़े वो रोने लगे, कहने लगे बेटा मैंने अपने बच्चों की खातिर और अपनी वफा की अपनी जौजा से शादी नहीं की, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे साथ वफा नहीं की. मैं गुर्बत पे आ गया, जॉब छोड़ गई तो वो मुझे छोड़ के बोलो भाई चलिए. सब ऐसी नहीं होती, औरतें अक्सर वफादारी होती हैं, लेकिन उनके साथ कुछ अल्लाह ने कुछ सजा दी होगी उनको. और आज बच्चे भी लेके गई, औरत जब जाती है तो बच्चों समेत ही गायब होती है वो. और कह रहे हैं आज अकेला इस घर में पड़ा हूं, इस बुढ़ापे में एक बेटी मेरे साथ आके रह रही है दामाद के साथ. इस बुढ़ापे में अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, कोई उठाने वाला नहीं था. मैंने कहा कर लेते तो 10 बच्चे और अल्लाह आपको अता कर देता हूं. समझ में आ रही है बात. तो जो बयान मैं आज जिस मौजू पर बात करने का इरादा था वो मैं, ये तो वैसे ही एक वाकया सुना रहा था आपको. मुतासर ना हो इस वाक्य से बिल्कुल भी आप लोग, ये मुतासर होने की जनरल नॉलेज के लिए वैसे एक वाक्य है. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ تو سب کو پتا ہے، نماز چھوڑنا، زنا کرنا، بدنظری کرنا وغیرہ وغیرہ. کچھ چیزیں اندر کی ہوتی ہیں، اندر کی، دل کی. آج ان دل کی برائیوں کو چھوڑنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، سنو. دیکھو خبردار، پہلے الرٹ کر دیا جاتا ہے نا کہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے. خبردار سنو، جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، ہے چھوٹا سا. سر ہمارا اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں کتنے بڑے بڑے، دل کتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا. فرمایا لیکن ایسا زبردست اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ جب وہ صحیح کام کرتا ہے تو پوری باڈی، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح ہوتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب. فرمایا خبردار سنو، وہ دل ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے. دل تھوڑی سی پرابلم پیدا ہو تو پوری باڈی متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور روحانی اعتبار سے بھی دل اگر خراب ہو گیا تو آپ کی پوری باڈی روحانی اعتبار سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، انسان انسان کم، جانور اور درندہ بن جاتا ہے. تو دل جو ہے نا، دل کی حفاظت، ہم جسمانی دل کی حفاظت کی تو بڑی پرواہ کرتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں کولیسٹرول نہ آئے رگوں کے اندر تاکہ دل صحیح طرح سے پمپنگ کرتا رہے. خمیرہ مراویر کھاتے ہیں، حکیموں کی دوا ہے دل کے لیے بڑی اچھی ہے، موتیوں والا، ایسے حکیموں کی باتیں ہیں. جواہر مہرا کھایا کریں، جواہر مہرا دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یاد رکھو یہ جو حکیمی دوائیں ہیں اس کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ بہت کروڑہا گنا بہتر ہے ایلوپیتھک سے. حکیموں کو دیکھیں 99 سال کے، میں نے بہت دیکھے ہیں 99 95 95 کے حکیم. ابھی میں نے کچھ دن پہلے حکیم صاحب کو بتایا تھا نا 71 سال کے تھے ہیں، رفیع بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کو. تو اس لیے کہ آرگینک چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، دیسی دیسی ہوتی ہیں. دواؤں پہ کم سے کم آئیں، غذاؤں پہ توجہ دیں. حکیموں کی دوائیں اکثر یہی جڑی بوٹیاں، یہی غذاؤں کو مرکب بنا کے دیا جا رہا ہوتا ہے، کیمیکل نہیں ہوتے اس میں اکثر. وہ فراڈی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو جیسے ہم جسمانی دل کی فکر کرتے ہیں، جواہر مہرا کھا کر نہیں کھاتے. تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک نالج بھی ہو جائے، جواہر مہرا کھایا کریں دل کے لیے بہت اچھا ہے، جگر کے لیے کیا ہے وہ بات بتاؤں گا. تو روحانی دل کی مضبوط، انسان تو جسم کا نام نہیں ہے نا خالی، جسم تو گدھے کو بھی اللہ نے دیا ہے، گھوڑے کو بھی دیا ہے، اور گھوڑے اور گدھے کا جسم ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو جسم کی وجہ سے میرے بھائی اگر ہمیں فضیلت ہوتی تو پھر ہمیں نہ ہوتی بلکہ بیل کو، گدھے کو، گھوڑے کو، شیر کو زیادہ فضیلت ہوتی، ان کو اللہ جنت میں داخل کرتے اور ہم سارے جہنم میں جاتے. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ جسمانی دل کی وجہ سے نہیں بلکہ روحانی دل کی وجہ سے. جسمانی دل صحت مند ہوتا ہے کہ جب اس کی پمپنگ صحیح ہو، وہ صحیح طرح سے دھڑکتا ہو، نالیوں میں کوئی کچرا نہ آیا ہوا ہو. اسی طرح روحانی دل وہ جب صحیح ہوتا ہے جب وہ حسد کے کولیسٹرول سے پاک ہو، تکبر کے کولیسٹرول سے پاک ہو. کولیسٹرول میں بھی دو قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں، اچھا والے اور گندے والے. حسد، کبر، بغض، ریا، دنیا سے عشق، دنیا کی محبت، یہ ساری چیزیں یہ روحانی دل کے گندے والے کولیسٹرول ہیں. اچھا والا کولیسٹرول کی لمٹ 200 تک سنا ہے کہ 200 سے اوپر ہوگی تو، سوری، کولیسٹرول جو گندا والا ہوتا ہے نا 200 سے اوپر جائے گا تو مسئلہ خراب ہونا شروع. اور ہمارے جو حسد، بغض، کبر کے کولیسٹرول ہیں یہ 1000 سے بھی اوپر ہوئے ہیں. रूहानी लिहाज से हम सबको हार्ट अटैक हो चुका है, रूहानी लिहाज से हम सब मर चुके हैं। बहुत मुश्किल है समझाना। ये तो जिस्म लेके हम घूम रहे हैं, जिस्म तो काफिरों के पास भी होता है मेरे भाई, जानवरों के पास भी होता है। बताओ गधे की कोई रूहानी जिंदगी है? बोले ना भाई। घोड़े की कोई रूहानी जिंदगी है? शेर की कोई रूहानी जिंदगी है? अगर आप कहते हो मैं बड़ा सेहतमंद दिल हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूं और बड़ा सेहतमंद हूं मैं, बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, तो एंजॉय तो मेरे भाई गधे घोड़े भी करते हैं लाइफ को। इंसान की जो फजीलत है, ये ठीक है कि जिस्मानी दिल की भी सेहत की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इंसान की जो फजीलत है वो रूहानी दिल की वजह से है, वो जिस्मानी दिल की वजह से नहीं है। तो रूहानी एतबार से दिल को सेहतमंद बनाने के लिए जरूरी है कि उसको तकब्बुर के कोलेस्ट्रॉल से, ब्लड में क्या हो, तकब्बुर का कोलेस्ट्रॉल ना हो, हसद का कोलेस्ट्रॉल, बोलने में कोई पाबंदी है, जागते रहेंगे आपका फायदा इससे, तकब्बुर का, हसद का कोलेस्ट्रॉल ना हो, रियाकारी का कोलेस्ट्रॉल ना हो, अल्लाह के लिए हो जो कुछ हो रहा है, शोबाजी का कोलेस्ट्रॉल ना हो, दुनिया की मोहब्बत का जो मुसाफिर खाना है, जो फना होने वाली है, उससे मोहब्बत, उससे इश्क, ये भी बड़ा खतरनाक और गंदा किस्म का कोलेस्ट्रॉल है। जब इंसान की बॉडी में गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल आता है तो चेहरे की रौनक खत्म होती है। आपने देखो जिनके जो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके चेहरे से झलक रहा होता है कि इसमें, डॉक्टर हकीम जो माहिर होते हैं ना देख के बताते हैं आपने कोलेस्ट्रॉल बहुत है, चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं होती। तो याद रखो जो रूहानी एतबार से जब ये गंदगियां इंसान में आती हैं तो रूहानी एतबार से उसके चेहरे पे रौनक खत्म हो जाती है। जो रूहानी दिल रखते हैं वो देख के ही पहचान जाते हैं कि इस आदमी क्या की रूहानी जिंदगी दुरुस्त नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनमें बड़ी खतरनाक है तकब्बुर, जिसमें आज हम सब मुब्तला हैं। तकब्बुर किसे कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की एक अलामत बयान की है। देखो बाज दफा किसी चीज को डिफाइन किया जाता है उसकी डेफिनेशन बयान करके, और बाज दफा किसी चीज को डेफिनेशन करके अगर बयान करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो उसको मिसाल से समझाया जाता है। मसलन अब देखो ये भी एक मुश्किल बात है तो मैं मिसाल समझा रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि गिलास की डेफिनेशन क्या है, एक आदमी आया आपकी जबान नहीं जानता, आपने उससे पूछा गिलास लेकर आओ, वो कहे गिलास किसे कहते हैं? अब आप चूंकि यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हो तो आप डेफिनेशन बयान कर रहे हो कि भाई एक ऐसी चीज जो लोहे की बनी हुई हो, गोल हो, नीचे पेंदा हो, उसको वो वक्त जरूरत इस्तेमाल किया जा सकता हो, पानी वानी डाला जा सकता हो, इट इज कॉल्ड गिलास। वो लोटा उठा के ले आएगा, गोल भी है पानी भी डाला जा सकता। तो आप कहो नहीं, एक डेफिनेशन में एक जुमला रह गया था, वो जुमला ये कि उसमें पानी डाला जा सकता हो और पीने के लिए, ऐसा पानी जो पीने की गरज से डाला जाता हो, वो जग उठा के ले आए, क्या ख्याल है भाई? आपने कहा एंड स्मॉल देन जग भी हो, यानी ऐसा पानी डाला जाता हो कि जो पीने के लिए हो लेकिन जग से उसका हुजम छोटा हो, वो कप उठा के ले आया, कमबख्त मनुस माजरत। तो ये उसका फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है कि एक चीज की डेफिनेशन मुश्किल है, उसको समझाना मुश्किल है। तो आप क्यों फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो न्यूटन के जो है ना वो तौर तरीके उस पर इस्तेमाल कर रहे हो? आप उसको बोलो भाई ये गिलास है, वो रखा हुआ है जहन में बिठा ले, ये क्या है, आइंदा जब भी गिलास वाले बोलूं तो, या उसको गूगल पे दिखा दो ये गिलास है, ये किसी बच्चे को ले जाके बैठे इसको दिखाना गिलास किसे कहते हैं, क्या हो गया भाई? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کو اللہ نے بھیجا لتبین للناس، ہر چیز کو کھول کے بیان کریں بہت آسان زبان میں. تو صحابہ نے پوچھا تکبر کیا ہے؟ اگر آپ ڈیفینیشن بیان کرتے ہم اسی میں الجھے رہتے. آپ نے مثال دی حق کا انکار، بطر الحق، حق کو تھتکار دینا. کیسی پیاری مثال دی. اگر آپ کے سامنے کوئی حق بیان کرتا ہے اور آپ کو حق کو قبول کرنے میں شرمندگی ہو رہی ہے تو یہ شرمندگی اس کی علامت ہے کہ آپ میں جو جذبات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. آپ میں کبر ہے، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ. تو جس بیس پہ آپ انکار کر رہے ہو حق کا، حق کا انکار اصل میں تکبر نہیں ہے، تکبر کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک عنصر ہے. لیکن جس بیس پر یہ آپ کر رہے ہو نا، جس جذبے کی بیس پر، وہ جذبہ کیا ہے؟ تکبر، جو آپ کے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے. اور اس کا صرف یہ نظریہ نہیں نکلے گا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اثرات ہوں گے. یہ تو ایک اثر ہے کہ آپ حق کا انکار کرتے ہو، لیکن اس کے اور بھی اثرات ہوں گے. آپ ظلم بھی کرو گے، آپ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہو گے. تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ مجھ میں تکبر کی بیماری ہے یا نہیں ہے، اس پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ کوئی آپ پہ انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کو اس کے انگلی اٹھانے سے غصہ آنا شروع ہو جائے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل. جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی مثال دی، صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس عمدہ ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نا نا نا، کیونکہ ہم تکبر اسی کو سمجھتے ہیں اور آج تک سمجھ رہے ہیں. کوئی بڑا عالم لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو نا، بڑی گاڑی میں، کہتے ہیں ان میں تکبر ہے، ہمارے نبی تو گدھے پہ سوار ہوتے تھے، یہ کس میں گھوم رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے نبی کے کپڑوں پہ تو پیمن لگے ہوتے ہیں، گوشتی پہن کے بیٹھے ہیں. تو نبی نے نہ گوشتی کو تکبر قرار دیا، نہ اچھے موبائل کو تکبر قرار دیا. لوگ اس میں بھی اتنا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے، اتنا مہنگا موبائل. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی جو گھڑی تھی اس وقت 60,000 کی، 1985، اس وقت 60,000 کی کیا گھڑی تھی؟ اللہ نے پیسہ دیا تھا. لوگ کہتے تھے اتنی مہنگی گھڑی رکھنے سے بہتر ہے کہ غریبوں کو کھلا دیں. یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے حضرت کے حالات جانتے نہیں تھے. حضرت نے اگر 60,000 کی گھڑی رکھی ہوئی تھی تو 1,20,000 غریبوں پہ خرچ کرتے تھے. بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا رکھتے ہیں اتنا خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے 60,000 کی یا 1,50,000 کی گھڑی، یہ اسراف میں داخل ہے. مالدار کے لیے اسراف میں داخل بولو نا یار، نہیں ہے. ہاں غریب آدمی، تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں، تم مہنگے مہنگے موبائل لے کے گھوم رہے ہو. جو اللہ نے، لوگ مجھے کہتے ہیں ولیمہ سادہ ہونا چاہیے، میں نے کہا ہاں دال چاول ہونے چاہیے ولیمے میں. کہنے اسلام میں سادگی، میں نے کہا بالکل دال چاول ہونے چاہیے. وہ بعض دفعہ کوئی ولیمہ ہوتا ہے نا، کوئی اللہ نے کسی کو پیسہ دیا، وہ بڑا شاندار ولیمہ کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، یہ آدمی کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، یہ ہر جگہ اچھا کھاتا ہے، تو ولیمہ تو ایک سنت عمل ہے اور بڑی اللہ نے ایک نکاح کی ترغیب دی ہے، ایک عبادت کا عمل ہوا ہے، اس پہ تو اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے گا نا لوگوں کو، اس پہ تو اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے گا. ہاں اسراف جب ہے کہ جب جتنے بندے آئے نہیں ہیں کھانا ڈبل پکوائے گا اور سارا ضائع ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. جیسے کہ آج کل شادیوں میں ولیموں میں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا اچھا کپڑا پہننا، عمدہ لباس، اچھا جوتا، اچھی پگڑی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ تکبر میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کو پسند ہے. فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. وہی سوال ہے پھر، ہمارے نبی کیوں ایسے بے منزدہ کپڑے پہنتے تھے؟ بھائی ہمارے نبی تو غربت تھی، مسکنت تھی، آپ کے پاس تو لباس خریدنے کے پیسے ہی نہیں تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. जिनके पास पैसा था उनको आपने मना नहीं किया, हजरत उस्मान गनी के पास पैसा था उनका लिबास अच्छा होता था तो आपके पास नहीं था, जिसके पास नहीं है वो ना करें। आप कहेंगे भाई हमारे नबी के पास पैसा नहीं था तो सदका तो खैरात कहां से होते थे इतने, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। तो भाई हमारे नबी ने पैसा रखा नहीं है, जितना आया सुबह आया तो शाम होने से पहले खर्च कर दिया, तो या तो इतना बड़ा दिल रखो कि पैसा रखो ही नहीं, इधर आया इधर सदका, और अगर इतना बड़ा दिल नहीं है तो फिर पैसा रख के इस्तेमाल ना करना, इसको कंजूसी कहा जाता है। और याद रखो कंजूस की दो किस्में हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजूसेस। कंजूसों की कितनी किस्में, खूब कान खोल के सुन लें। एक को अरबी में बखील कहते हैं, एक को शहीह कहते हैं, शहीह शीन हलवे वाली हा, ठीक है ये ज्यादा अच्छा याद हो जाता है हलवे वाली हा से, और फिर या और फिर हा, शुख जिसको कहा जाता है। बखील उसको कहते हैं जो कमबख्त दूसरों पे खर्च ना करे हालांकि जरूरत भी हो, नबी बच्चों पे खर्च कर रहा है बचा बचा के रखा हुआ है, और कंजूस और शही उसे कहते हैं जो कमबख्त अपने ऊपर भी खर्च ना करे। ये बहुत परले दर्जे का कंजूस, जैसे वो मैं घी के डब्बे वाला वाक्य सुनाता रहता हूं ना आपको अक्सर, अरे फिर सुना दे तो नए नए लोग भी आते हैं। वो एक शही था यानी बुखल की सुपरलेटिव डिग्री, वो देसी घी लेकर आया और अपने बच्चों से कहा के डब्बे से लगा लगा के खाना, क्योंकि डब्बे पे भी चिकनाहट होती है ना घी के डब्बों पे, तो जब ये डब्बे की चिकनाहट खत्म होगी फिर हम अंदर से डब्बा खोलेंगे। तो बच्चे भी उसी के औलाद थे भाई, वो गैरतमंद बच्चों से बोलते अब्बा तू ही खा ले हमने खाने ही नहीं है, ये डब्बे के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है, तो वो डब्बे से लगा लगा के खा रहे। इसको सफर पे जाना था तो डब्बा अलमारी में लॉक करके चला गया कि ऐसा ना हो ये पूरा खोल के खा रहे हैं, कुछ दिन नागा कर लो भाई। वापस आया बच्चों से पूछा बच्चों घी का डब्बा कहाँ है, अब्बा अलमारी में रखा हुआ है, खोला तो नहीं निकाला तो नहीं, कि कह रहे नहीं। फिर नाश्ता कैसे करते थे, अब्बा अलमारी से रोटी लगा लगा के खा, इस पर थप्पड़ मारा कमबख्तो कुछ दिन घी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे, तो ना अपने ऊपर खर्च करता है, जब अपने ऊपर भी नहीं कर रहा तो दूसरों पे। इस ये बुखल का आला दर्जा है, आज ये भी लोगों में वाफर मकदार में पाया जाता है। खा नहीं रहे यार तुम, इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, प्लॉट पे प्लॉट, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ दौर में थोड़ी आएगी। हाँ पहले अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सवारी रखो, फिर बचे तो बहरी टाउन में प्लॉट भी ले लो, सदका तो खैरात भी करो, फिर बच गया तो चलो यार अब फालतू पैसा है बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। पहले तुम भी तो किसी के बच्चे हो, खुद भी तो खाओ, अपने बच्चों के लिए अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, और फिर आपका जब बच्चा पैदा होगा वो कमबख्त आपसे भी आगे, वो भी नहीं खाएगा, वो कहेगा अपने बच्चों के लिए, तो अपने लिए कौन कर रहा है। खाओ पियो मौज मस्ती करो हलाल, बहुत अल्लाह ने दिया तो एक प्रॉपर्टी भी ले लो, मैं मना नहीं करता प्रॉपर्टी, बहुत अल्लाह ने दे दिया तो चल यार अब जिंदगी मुसाफिर खाना है, अच्छी गाड़ी भी रख ली और माशाल्लाह अच्छा खा भी लिया, अच्छा पहन भी लिया, लाइफ को एंजॉय किया, अब भी हैं तो सदका भी कर दिया, खैरात भी बहुत कर रहे हैं, चलो जाया करने से बेहतर है क्या करो, प्रॉपर्टी लो, बच्चों के काम आ जाएगी, अल्लाह ने मौका दिया तो घर बना लेंगे। घर पे तो मैं कहता हूं कोशिश करो घर बनाओ ही नहीं जाती, लोग कहते हैं तबाह इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदो बेचने के लिए, घर किराए पर ही अच्छा होता है। अबे भाई तुम 1 करोड़ का घर खरीदोगे उसमें रहोगे तो बेहतर नहीं है कि किराए पर लो और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, वो डबल हो जाएगी, उसे बेचो, क्या ख्याल है, 2 करोड़ में बेच के 1.5 करोड़ खुद रखो, फिर 1.5 करोड़ में अगली ले लो 50 लाख, फिर खाओ पियो, ऐसे रूलिंग करो रूलिंग, मर गए तो प्रॉपर्टी के बच्चों के काम आएगी। नहीं आज समझ में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जैसे वो भी ठीक है, मेरी एक राय है कि जब आपके पास बहुत पैसा आए तो भी रेंट पे ही रहा करो, दुनिया मुसाफिर खाना है, उधर से भी जनाजा निकलेगा इधर से भी निकलेगा, दीवारों ईंटों से दिल लगाना ये पसंदीदा काम नहीं है, प्रॉपर्टी खरीद के बेचो अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, इससे ये बिजनेस करो, खुद रेंट पे रहते रहो, घर वालों को बता दो भाई कहीं नहीं आ रहे, हमारा अपना घर भी है, हमारा अपना घर भी तसल्ली के लिए ना, अपना भी है बेचने के लिए है, और बेच के दूसरा ले लेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो फिर मौज मस्ती करेंगे, दाल रोटी खा रहे हैं और मकान जाती, उस तो कुछ मेरा जाती मकान, मेरा जाती मकान, अरे उससे करोड़ा गुना वो बेहतर है जो किराए पे रह के अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छी सवारी में घूमता है। बसों में लटक लटक के जा रहे, मेरे बहरिया टाउन में 3 प्लॉट हैं, तो क्या कर लिया तूने, जा तो कम बगत डब्ल्यू 11 में लटक लटक के जा रहा है। नबी ने फरमाया तुम्हारा माल वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, बाकी तुम्हारा हमारा कुछ नहीं होता। अल्लाह का बड़ा फजल है मेरे ऊपर, मैं बड़ा नालायक आदमी हूं, मैं कभी किसी का बंगला मकान देख के मुतासिर नहीं होता कि हाय मेरे पास भी ऐसा होता। इतने बड़े बड़े बंगले में गए तो यार हम इतने साल के हो गए, रहे कितने गए, थोड़े से और साल रहेंगे उसके बाद खबर है, वो भी जवानी में और थोड़े से रह गए, उसके बाद खांसना है किराए के घर में, खांसो ज्यादा फिर टीवी उधर पहले ही है, अगले किराएदार मुतासिर होगा। फिर भी जाती घर खरीद सकते हैं, पाबंदी नहीं है, शरण जायज है। लेकिन मैं एक मशवरे के तौर पे कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो खरीदो ही नहीं, कुछ भी नहीं करो, खाओ पियो मौज मस्ती करो। और अगर बहुत ज्यादा अल्लाह ने पैसा दिया, अच्छा खा के, अच्छा पहन के, अच्छी सवारी भी रख ली, बेहतरीन गाड़ी रखो, बेहतरीन बीवी रखो, बेहतरीन बच्चे रखो, ठीक है ना, जब बेहतरीन बीवी होगी तो बच्चे भी खुद बहुत बेहतरीन होंगे ना, पैसा खर्च करके बेगम भी बेहतरीन लेकर आओ, अच्छी बेगम ज्यादा मेहर में मिलती है, थोड़े मेहर में नहीं मिलती। एक साहब हमारे गाड़ी खरीद रहे, मैंने कहा तू शादी कर ले, कमारे छड़े छाट, कह रहा यार गाड़ी होगी बीवी तो, मैंने कहा कम बहुत बीवी पे खर्च कर, बीवी पे पहले अच्छी बीवी का होना जरूरी है, पैसे खर्च कर वो अच्छे खानदान की, गरीबों में भी अच्छे खानदान की होती है, लेकिन जाहिर है लोग तो देखते हैं ना सबसे पहले रोकड़ा क्या खर्च कर रहे हैं, कह रहे गाड़ी देखते तो बीवी मिलेगी। मैंने कहा मिलेगी उसको खिलाने के लिए, तेरे पास पैसे नहीं होंगे, बेगम अच्छी लेकर आओ फिर गाड़ी भी अच्छी ले आओ। और ये अल्लाह का फजल है कि वो जब निकाह होता है तो अल्लाह बरकत भी देते हैं। तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छा खिलाओ, ये दुनिया गुजर रही है, खत्म, जो इस्तेमाल हो गया हो गया, फिर अल्लाह ने बहुत दिया है तो चलो यार जाया ना हो जाए, प्रॉपर्टी ले लो, बैंकों में रखने से बेहतर है प्रॉपर्टी ले लो, बच्चों के काम आ जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो बेच दे के फिर और ज्यादा अच्छा खाएंगे, ठीक है ना, ऐसे जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। और फिर अपना भी घर ले लिया किसी ने तो भी ठीक है कि यार जब ये बिकेगा तो अच्छी कीमत पे बिक के फिर और अच्छा वाला ले लेंगे। लेकिन मेरा राय है कि घर लेने के बजाय ना लो इन दीवारों ईंटों में पैसा ही बर्बाद मत करो, इससे कुछ भी हासिल, इतने महंगे घर हैं उससे आपका पैसा बर्बाद हो, वो सारे अंडे पराठे जो आपने खाने थे वो दीवारों में इन्वेस्ट हो जाते हैं, जो कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगी वो दीवारें। यार मुसाफिर खाना है, लोग कहते हैं मालिक मकान निकाल देता है, निकाल के उस गली में चले जाना, दिल नहीं लगाना भाई, मसला तो सारा यही है, दिल क्यों लगाए इस महल्ले से, भाई इस गली से मुझे निकाल के वहां चला गया तो इस गली से तो तेरा क्या है, तेरे क्यों तू इतना इश्क कर रहा है इस गली से, हैं? कब्रस्तान है असल बस, बाकी सब ट्रैवलिंग, सही है ना, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां। अपना जाती घर भी तो ऐसे ही होता है ना, जाती घर लो, जब ज्यादा पैसा आदमी कहता है यार ना जवाब छोड़ो डिफेंस निकलो, यार डिफेंस में बहुत पैसा, छोड़ो यार स्विट्जरलैंड चलो, अमेरिका चलो, यहां कौन सा इंसान टिकता है किसी जगह। ये जायज नाजायज की बात नहीं, मशवरे की बात है, और हमारे शरीयत के मिजाज के ज्यादा करीब है ये। तो जल्दी से बात को समेटूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक का इनकार ये क्या है, तकब्बुर। ये घर की बात कहां से आई, बात कहां चल रही थी, बात कहां चल, वो घी वाला, हां कंजूस कहते हैं जो अपने ऊपर भी, बखील यानी शहीह कहते हैं जो अपने ऊपर भी खर्च ना करे। तो आज हम लोगों की हालत ये हो गई, अपने ऊपर नहीं खर्च कर रहे, रिश्तेदारों पर भी खर्च किया करो, इससे तुम्हें ही फायदा होगा, रिश्तेदारी मजबूत होगी। तो खर्च करने वाला अल्लाह को पसंद है। तो खैर अपनी जात पे वो बात, यार कुछ कंफ्यूजन हो रही है, टॉपिक में लेके चल रहा था वो उससे दाएं बाएं हो गया हूं मैं, है कंजूस की दो टाइप तो मैंने बयान कर दी, ये बात आई कहां से, हां मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बता दिया जज़ाकअल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर को जो डिफाइन किया उसने हमारी गलतफहमी दूर कर दी। हम तकब्बुर समझते हैं अच्छी गाड़ी है भाई और अच्छी सवारी, लोग उलमा पे यही इतराज करते हैं, ये गाड़ी में घूम रहे हैं, वो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, इनके गार्ड आगे पीछे घूम रहे हैं, ये किबर नहीं है, आपको लग रहा है ये किबर, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया फिर शोबाजी है खामखा की, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, अपनी औकात में रहना चाहिए। تو جمال کو پسند کرنا، خوبصورتی کو پسند کرنا یہ قبر میں داخل نہیں. ہمارے نبی نے چونکہ پیسہ رکھا ہی نہیں اس لیے وہ سب غربا مساکین پہ خرچ کر دیا، کیونکہ آپ نے ایک دنیا کے لیے نمونہ بننا تھا. بعد میں غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے اصل میں یہ دنیا پرست تھے معاذ اللہ، تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کوئی انگلی اٹھا ہی نہ سکے، شکوک اور شبہات کے سارے دروازے بند کر دیے. لیکن عمومی اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک شخص نبی کے پاس آیا، پرا گندا بال، پھٹے پرانے کپڑے، آپ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو دولت کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے آثار اس پہ نظر آنے چاہیے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو شکل سے لگنا چاہیے کہ پیسے والا آدمی ہے، موبائل سے لگے کہ بندہ پیسے والا ہے، کپڑوں سے لگے کہ بندہ، اس کو توازو نہیں کہتے، کہہ رہے حضرت جی کے پاس اتنا پیسہ مگر چڈی بنیان میں گھومتے، توازو ہے، دھوتی بنیان میں رہتے ہیں، ہر چڈی تو خیر نہیں دھوتی، یہ توازو نہیں بھائی. ہاں بعض لوگوں کی طبیعت میں لاوبالی پن ہوتا ہے، وہ اتنے اہم کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت سادہ لباس، اس لیے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہیں، اتنے بڑے بڑے کاموں میں. اچھا سادگی میں اور زینت میں فرق ہے، یعنی لباس اچھا ہو، فیشنیبل ہو یا نہیں ہو، یہ آپ کے ذوق پر ہے. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سادہ لباس پہنتے ہیں، بہت سادہ. بعض لوگوں کے پاس مال آتا ہے تو وہ کڑھائیوں والے کرتے پہنتے ہیں، تو یہ کڑھائیوں والا کرتا یا اس طرح کی چیزیں، یہ اس کا آپ کے ذوق سے تعلق ہے، اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے. یہ تو سادگی اسلام میں پسندیدہ چیز ہے، لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں، کڑھائیوں والے کرتے بھی پہن سکتے ہیں، اور زیادہ شوبازی بھی، جو شوبازی سے پورا جائز شوبازی. تو تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفائن کیا، حق کا انکار، تو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس پہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مصیبت ہی ہم دوسروں کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں فوراً، کہ یار اچھا میں نے اس کو اس دن بات بتائی تھی تو غصہ آ گیا، تکبر ہے اس میں. او بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اگر آپ نے کسی کو حق بات بتائی اس پہ غصہ آ گیا تو فوراً تکبر کا فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ کا بتانے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. آپ سب کے سامنے ایک آدمی کو غلطی پر ٹوک رہے ہیں اور وہ قابل عزت آدمی ہے، تو پھر اس کو غصہ آنا بجائے وہ کہتے یار یہ بات مجھے تنہائی میں بھی بیان کی جا سکتی. بعض دفعہ آپ نے ایک دفعہ غلطی پہ ٹوکا، انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ غلطی ایسا ہے نہیں، آپ کو غلط فہم، پھر آپ ٹوک رہے ہیں، پھر آپ ٹوک، تو اس کو غصہ آئے گا نا پھر. تو وہ کوئی یا بیٹا باپ کو باپ بن کے ٹوک رہے ہیں، ابا آپ کو اس نے بھی سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں کیا کرو، ابا کہیں گے نا بیٹا ایک دفعہ سمجھا دیا بس ٹھیک ہے، پھر دوبارہ پھر تیبارہ، تو پھر ابا کو غصہ آنا بالکل بجائے کہ تو باپ ہے یا میں باپ ہوں. تو غلطی پر تو ہر ایک کو ٹوکنا چاہیے، لیکن ٹوکنے کا طریقہ کیا ہو، وہ طریقہ بسا اوقات آپ کا غلط ہوتا ہے. ابا کو سمجھانے کا شریعت میں طریقہ کچھ اور ہے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایک ایسی چیز تھی جو میں سمجھتا تھا یہ غلط ہے، والد صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، جو میرا خیال تھا. میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ان کو میں کس طرح سے سمجھاؤں، کیونکہ باپ کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے، آپ ان کے سامنے سمجھانا شروع کر دو بولے گا اچھا ہیں ہم نے جنا ہے اور ہمارا ہی باپ بن گئے، ہمیں مولوی بن گیا تو ہمیں سکھانا شروع کر دیا. تو بڑا کئی دن تک سوچتا. آج کل لوگوں میں یہ تمیز ختم ہو گئی ہے، تمیز ختم، کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے، کس سے کیسے. باپ کو یہ ہے کہ جب چاہے سمجھا دے بیٹے کو، بیٹے کو اف کرنے کی اجازت. اگر وہ باپ ہے نا جو کئی دنوں تک سوچ رہا ہے بیٹے حضور کو ہم کیسے سمجھائیں ان کی شان میں گستاخی، اس کا مطلب بیٹے میں تکبر ہے، سمجھ میں آ رہی، اپنی اوقات سے. تو باپ ہے جیسے آفیسر، دیکھ لو آرمی میں کیا ہوتا ہے، آرمی میں آفیسر جب چاہے کسی فوجی کو بلا کے سمجھائے گا نا بھائی یہ کرو یہ نہیں کرو. ہاں جو جونیئر ہے وہ سینئر سے بات کرنے سے پہلے سوچے گا. تو یہ اصول ہے دنیا کا، یہ فطری نظام ہے. तो मैं सोच रहा था अब्बा को कैसे बताऊं मैं। कई दिन तक सोचता रहा, अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से मशवरा किया, फिर सोचने के बाद एक लेटर लिखा, बड़े अलकाबात लगा। मैंने कहा बराह रास्त बात करना मुनासिब नहीं, वो एक खत लिखा मैंने, तहरीर लिखी अब्बा के तकिए के नीचे। अब्बा ने पढ़ी, बड़े खुश हुए और वो बात अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम की उन्होंने। बड़ा अपना एक फैसला था जिंदगी का जो उन्होंने तब्दील कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। अब भी अगर वो नहीं मानते तो फिर तकब्बुर की अलामत होती। भाई एक बात है जो बताई जा रही है आप सिर्फ इसलिए कि बेटे ने क्यों कह दिया, तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। वो उन्होंने अपना फैसला चेंज कर दिया। तो हम में से बहुत से लोग जब बात करते हैं तो लठ मार रहे होते हैं नसीहत। हर आदमी अपने आप को ना इलाके का DSP समझता है, थानेदार समझता है, लेकिन उमूमी हुक्म शरीयत का यही है कि जब कोई आपको बात बताए, आपको पता चल जाए कि ये गलती है, तो आप मानो कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैं माजरत करने के लिए तैयार। इस पर शैतान आपको कहेगा इससे तुम्हारी इज्जत मुआशरे में कम हो जाएगी। शैतान तो बैठा है ना, कोई भी अच्छा काम नहीं करने तो फौरन शैतान कहेगा अब इंसल्ट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए गिरता है अल्लाह उसको उठा देता है। लगेगा कि इज्जत कम हो रही है मगर लोगों की नजर में इज्जत बढ़ रही होगी। और जो अकड़े रहते हैं ना तकब्बुर की तरफ। अच्छा एक बात बता के बस बयान खत्म करता हूं, याद रखो मैं देखो किसी की साइड नहीं लेता हूं। घरों में एक चीज बहुत ज्यादा होती है कि औरत जब शोहर को समझाती है ना उसकी गलती, तो शोहर को अक्सर गुस्सा आता है गलती पे, हालांकि वो सही होती है औरत। ये मर्दों की एक उमूमी बीमारी है, उनको ये होता है मेरी बीवी मुझे क्यों समझा रही है, वो आना का मसला बनाते हैं। ये भी तकब्बुर है, नहीं आ रही बात। जैसे मुझे बोला क्यों, से मुझे समझाया क्यों, मुझे ऐसा क्यों बोला इसे। तो अगर कभी वो बोल दिया करें ना कि आपके अंदर कोई गलती है ये सही नहीं है, तो सुन लिया करें तमीज से बैठ गए, ठीक है ना। एकदम जज्बाती ये क्यों कर दिया। ये भी होता है कि लड़की के अब्बा अम्मा आए दामाद को समझाने के लिए, दामाद बैठने के लिए तैयार नहीं है, बैठता ही नहीं वो कम्बख्त, मैं नहीं बैठूंगा। ये तकब्बुर है, क्यों नहीं बैठोगे भाई, वो आए बैठो तो सही, बात तो करो। अगर से आप बिलफर्ज गलत नहीं कर रहे, आप सही हो, लेकिन ये बात करना आपका की अखलाकी जिम्मेदारी है। वो सुनते ही नहीं है, वो गैर का मसला बना लेते। ये हमारे पास तो फैमिली केसेस आते रहते हैं ना, उस कंबख को बुलाओ आता ही नहीं है, मैं नहीं आ रहा, दफा हो फिर तू क्या सुरखाब के पर लगे हैं तेरे, कह मैं गलत नहीं हूं, क्यों नहीं हो सकता भाई तू गलत। तेरे अपा ने जब तुझे जाना था तो कोई सर्टिफिकेट भी साथ में आया था कि ये बेटा गलत नहीं हो सकता। हर आदमी सही भी हो सकता है, हर आदमी गलत भी हो सकता है। तो किबर अल्लाह को पसंद नहीं है। और जो अपनी गलती सुनने के लिए तैयार ना हो, मानने के लिए तैयार ना हो कि मैं गलत हो नहीं सकता, अल्लाह उसको जलील करता है दुनिया में, ये बता दूंगा। ये तो अपनी आंखों से देखा हुआ मुशाहिदा है, और ये तो हदीस में भी आता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा कैश मिलती है, आखिरत पे भी है लेकिन दुनिया में तो मिलती है। जो आदमी, मैंने अपने बड़ों से सुना है, उलमा से, कोई आलिम वो गलती सुनने के लिए तैयार ना हो कि मैं चूंकि आलिम दीन हूं मेरे से गलती नहीं हो सकती, मैं आलिम दीन हूं मुझे क्यों समझाया जा रहा है। शोहर घर में सुनने के लिए तैयार ना हो कि मैं मर्द हूं औरत मुझे क्यों बता रही है। बेटा सुनने के लिए तैयार ना हो कि बाप मुझे क्यों नसीहत कर रहा है। मस्जिद का इमाम सुनने के लिए तैयार ना हो कि मुख्तदी मुझे क्यों समझा रहे हैं। बाज़ दफा ये भी होता है कि मैं इमाम हूं मुझे क्यों समझाया जा रहा है, ये गड़बड़ बाज़ दफा हर जगह नहीं होती लेकिन ये भी जुर्म होता है। मदरसे का उस्ताद सुनने के लिए तैयार ना हो तलबा की शिकायत कि नहीं मैं उस्ताद हूं मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों करवाई। तो मेरे भाई उस दिन से जवाल शुरू। अब मैं आपको देखो एक ऐसा हल बताता हूं जिससे ये बीमारी खत्म हो जाती है, वो हल ये कि बोलो भाई तबलीग में जैसे कह रहे हम सब सीखने वाले हैं। खत्म। अगर कोई आपसे कहे भाई आप ये काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, भाई कोशिश करेंगे हम सीधे। मैं तो बयान में बार बार कहता हूं भाई जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं दुआ करो अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। वो ये साहब कहने लगे यार वो आपने चाय के खिलाफ बयान किया उस दिन आप चाय पी रहे थे, मैंने कहा यार दुआ करो हमें भी अल्लाह इंसान का बच्चा बना दे भाई। ठीक है ना, इसमें आफियत है। कौन 100% चलता है भाई, बस गुटखा नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप समझो। अच्छा गुटखे के खिलाफ बयान, गुटखे भी छोड़ते होंगे, अच्छी चीज नहीं है, चाय पिला देते हैं लोग जबरदस्ती, फिर चस्का लग जाता है, फिर सोचते हैं तौबा करेंगे, फिर शुरू हो जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं अप्रिशिएट ही नहीं करते, डॉक्टर लोग भी कहते हैं यार लोग पता नहीं हीरोइन पी रहे हैं आपने चाय के लिए तो क्या हो गया, लेकिन बहरहाल गलत चीज है। मैं एक दफा हांगकांग में ना वो वीडियो बनी थी चाय को, नीचे कमेंट हबे चाय पी रहा है भाई। हम कब कहते हैं हम 100% दुरुस्त है, कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, क्या ख्याल है, मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं भाई इस इंसान के बच्चे बनने। मेरे तो बार दफा अखलाक पे बयान होता है, बीवियों से अच्छा सलूक करो घर जाके मेरा अपना फट्टा हो जाता है। एक दफा तो ऐसा हुआ मैंने यहां अखलाक पे बात की कि घर में तमीज से बात करना चाहिए, चीखना नहीं चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि सबसे बुरी आवाज किसकी है, गधे की, चीखो नहीं। घरों में जो मर्द चीखते हैं बर्तन उठा उठा के फेंकते हैं, ये पुरानी बात है, 8-9 साल हो गए, उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी शुक्र है। तो फायदा तो होता है नसीहत करने का, सुनने का भी, किसी को पूरा फायदा होता है, किसी को आधा होता है, किसी को 1/4 होता है। तो हम भी गोश्त वोश्त के बने हुए आपकी तरह के इंसान है, कोशिश करते हैं हम भी अखलाकियात पर बात करें, तमीज जिंदगी गुजारे, नहीं गुजरती तो तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह अब गलती हो गई आइंदा नहीं चीखूंगा। चीखना चिल्लाना बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कभी कभार इंसान चीखता। अल्लाह ने सहाबा को मना किया नबी के सामने आवाजें ऊंची मत कहो, कभी उनसे भी हो जाया करती थी, तौबा इस्तिगफार करते थे। तो हम सब मेरे भाई गोश पोश के बने हुए इंसान है, गलतियां करते हैं, तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, तुम सब गलती करने वाले हो, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लें। तो नसीहत भी की जाएगी सुनी भी जाएगी, पूरा फायदा ना हो तो थोड़ा सा तो फायदा हो जाएगा, कुछ बासलाहियत होते हैं पूरा फायदा हो जाता है उनको। हमने अपने शेख को देखा 20-24 साल में उनके साथ रहा हूं, आज तक कभी उनकी ऊंची आवाज मैंने नहीं सुनी, कभी जिंदगी में नहीं चीखे। कैसी बात है, कैसा सबर है, हालांकि गुस्सा भी आया बहुत, आवाज हमेशा पस रहती है, हमारे अंदर वो स्टैमिना नहीं है। प्रे के लगाते हैं घर में जाते हैं, कभी उल्टा सीधा कुछ हो जाए, कोई बेगम ने करेले में नमक, एक तो करेला ऊपर से नमक ज्यादा और भूख लग रही है, खाना सही नहीं बना, इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो हम अपने अखलाकियात पर मौलाना तारिक मिल साहब के बयान सारे दिमाग में लेकर आते हैं, अखलाक वो ला ला के सिलेंसर जिस स्पीड से फटना चाहिए उस स्पीड से नहीं फटता, मगर फिर भी थोड़ा बहुत फट जाता है वो। समझ में आ रही है बात, अगर वो बयान ना होते तो बहुत स्पीड से फटते हैं, तो वो कुछ ब्रेक लग जाती है कुछ, फिर बाद में इस्तेफार भी तो है, मतलब तौबा के दरवाजा क्यों रखा हुआ है, इसलिए तो रखा है लगा पता है कुछ मुझसे भी माफी मांगो, सारा खुद थोड़ी करोगे, कुछ अल्लाह को भी माफ करने में मजा आता है। तो ये सब हम सब सीखने वाले हैं, ये अपना जहन बना लोगे तो तकब्बुर मार्केट से स्टार्ट हो जाएगा, फिर कोई नसीहत करेगा तो बुरी नहीं लगेगी, भाई हमने कब काम फरिश्ते हैं भाई, समझा दिया करो मान लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये अपना जहन बनाओ और ये तबलीग में निकल के जहन बनता है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल करने की तौफीक अता करे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मुफ्ती तारिक मसूद फेमस स्कॉलर
created with free version for non-commercial use.